نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. اپنی تلاش کے سلسلے میں آج ہمارا نو یور پرسنالٹی اس ٹاپک میں تیسرا سیشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت بنی اسرائیل میں جو بات کہی آیت 84، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہو اہدی سبیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے. اس آیت میں لفظ شاکلہ پہ ہم بات کر رہے ہیں، تیسری نشست ہے آج، کہ جس طرح ہماری شکلیں مختلف ہیں اسی طرح ہماری شاکلہ بھی مختلف ہے. شکل اگر ظاہری فیچرز، حال حیت، رنگ ڈھنگ کا نام ہے، تو شاکلہ ہماری پرسنالٹی، ہمارے اندر کے چھپے ہوئے انسان کی کیفیت کا نام ہے. ابو بکر صدیق بھی بہت نیک انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، لیکن دونوں کی شاکلہ فرق تھی. دین کے ایک اینگل پہ اگر ایک کی نظر ہے تو دوسرے کی دوسرے پہ ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ انسانوں کی اس دنیا میں آپ اور میں جن جن لوگوں سے ملتے ہیں ان میں مختلف خوبیاں ہوتی ہیں. ایک انسان بالکل خوبیوں کا مرقع اور دوسرا خامیوں کا پلندہ نہیں ہے. اللہ نے بہترین طریقے سے انسانوں کو بیلنس کیا. ابھی تک ہم 34 میں سے جو پرسنالٹیز ٹائپ پڑھ چکے ہیں، ذرا سا ان کو دہرا لیتے ہیں، اور پھر اب بار بار سننے سے ہمیں یہ بھی تو پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ ہم کس قسم میں ہیں. اور خود کو جان لینا خود سے کام کروانے کا پہلا مرحلہ ہے. بہت سارے لوگ زندگی میں صرف اس لیے کوئی کام کر یا کروا نہیں پاتے کہ نہ تو ان کو اپنی خوبیاں پتہ ہوتی ہیں اور نہ دوسروں کی، اور اپنی پتہ ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا زندگی میں گول کچھ اور ہے جبکہ آپ کی شاکلہ کا تقاضا کچھ اور ہے. بالکل اسی طرح سے دنیا میں انسان کچھ اس قسم کے کاموں میں لگے رہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو بڑے مصروف ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ہے، لیکن گلے شکوے بہت ہوتے ہیں. یعنی ہمارا یہ موضوع کہ ہم یہ اس موضوع پہ کیوں بات کریں، ایک تو خود سے فائدہ اٹھا سکیں، اللہ تعالیٰ کے ماسٹر پیس ہونے کا احساس ہمیں اپنے آپ کو بیکار وقت ضائع کرنے والے مشغلوں سے نکال کر کارآمد بنائے، اور وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ پہ ہم عمل کر سکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود انسانوں سے بھی خیر لے سکیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف انسانوں کی صورت میں ٹیلنٹ دیا ہے، مختلف خزانے ہم سب کو دیے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. بہت سارے جھگڑے گلے ختم ہو جائیں اگر ہم اس موضوع کو سمجھ جائیں. ہمارے بہت سارے رشتے ناطے کرنے کے جو گڑبڑ تھی، یا جو اس میں کہہ لیجئے کہ معاملات میں خرابیاں تھیں، وہ دور ہوتی ہیں. اور بھی بہت کچھ ہے، ماشاءاللہ ہم سنتے ہی آئے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی تک کن کن کو جان چکے. ایک تھے اچیورز، مزید کی تڑپ رکھنے والی شخصیات. نام ہی واضح کر رہا ہے کہ یہ کیسے بے چین لوگ ہوں گے کہ جو کبھی بھی جو مل جائے اس پہ مطمئن نہیں، بلکہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں. اور اگر ایسے لوگ اچھی چیز میں چلے جائیں تو بہت کامیاب طور پہ بہترین اچھے ہوں گے. یہی السابقون الاولون ہوتے ہیں، اور یہی اصل میں ففروا الی اللہ اور فاستبق الخیرات پہ عمل کرتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر ان کو گائیڈ لائن اچھی نہ ملے، یا ارد گرد کا ماحول اگر خراب ہو، تو پھر یہی لوگ گناہوں میں بھی خوب سے خوب تر میں جاتے ہیں. یعنی یہ کسی کنارے پہ نہیں رکتے کہ جہاں تھے وہیں ہیں. ہر دن یا تو آگے سے اچھے ہوں گے یا آگے سے خراب ہوں گے. پھر دوسری قسم جو ہے عمل کے لیے بے چین شخصیات کی تھی، یعنی بہت ایکٹیو لوگ ہیں اور ہر وقت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کو سوچنے سے زیادہ کرنا اچھا لگتا ہے. یہ بہت لمبی میٹنگز میں، پلاننگز میں نہیں پڑھنا چاہتے، بس یہ کہتے ہیں جلدی بتائیں کہ کام شروع کرتے ہیں. پھر اسی طرح تیسری قسم ہم نے دیکھی تھی، لچک اور مقبولیت رکھنے والے لوگ. یہ ایکسیپٹنس ہوتے ہیں، یعنی یہ بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں اور لوگوں میں یہ پاپولر بہت ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ نرم صوفہ سب کو اچھا لگتا ہے، سافٹ جوتا سب کو اچھا لگتا ہے، और फिट टू ऑल कपड़े सबको बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। तो ऐसे लोगों में रहना, उनसे काम लेना और उनके बीच में रहना बहुत ही खुशगवार होता है कि जो हर चीज़ में अपने आप को ही बदल लें। और गोया कि ये वो रोड़ा नहीं होते पत्थर के, जो गलता ही नहीं है, पूरी दाल गल गई और आखिर में ये मुंह में आकर सारा जायका ख़राब कर दें। और ये एक बड़ी खूबसूरत सी टाइप है अगर मेरे आपके अंदर ये चीज़ है तो। फिर इसी तरह एनालिटिकल्स देखे थे हमने, मंतकी तज्जिया करने वाली शख्सियत, हर वक्त एनालिसिस करते रहते हैं, ये हुआ तो ये होगा, वो होगा तो ये, यानी अंदाजे बहुत लगाते हैं। और थोड़े लिबॉर्ट्री टाइप के लोग होते हैं, होते तो लिबॉर्ट्री में नहीं, महफिलों में, शादियों में, दावतों में, हर जगह बहुत जल्दी एनालिसिस करके लोगों को नतीजे भी बता देते हैं कि अब आगे ये होगा। फिर इसी तरह ऑर्गेनाइजर्स यानी तरतीबो तंजीम पसंद शख्सियात हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई चीज़ दुनिया में इनको इधर से उधर अच्छी नहीं लगती, दरख्त के नीचे गिरे पत्तों को भी देखते हैं कि ये सलीके से गिरे या गैर सलीके से। फिर इसी तरह पुरयकीन शख्सियत, फुल ऑफ बिलीव, ये है असल में वो लोग जो ईंटें पत्थर बन जाएं बुनियादों की तो बड़ी बड़ी बुनियादें खड़ी हो जाती हैं, और इनका यकीन इनके लिए दरियाओं में रास्ते भी बना देता है, पत्थरों को भी हटा देता है। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है, लीडरशिप के लिए दी बेस्ट पीपल है ये। फिर इसी तरह हाकिमाना शख्सियत यानी कमांडर्स हैं, यानी कुछ लोग हर वक्त दूसरों के ऊपर खुद को एक हाकिम के तसव्वुर में देखते हैं, चाहे वो माँ हैं तो बेटी बेटे को, या इसी तरह दूसरे रिश्तों में। और इसी तरह साथ काम करने वाले लोग भी बाज़ दफ़ा अपने कुलीग्स को अपना डिपेंडेंट और ख़ुद को उनका हाकिम सोच लेते हैं। फिर इसी तरह किस्म हमने देखी इबलाग की माहिर शख्सियात में से, यानी कम्युनिकेटर्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, घुट घुट कर नहीं रहते, अपने दिल में किसी के लिए गुस्सा या ग्राज रख के नहीं बैठते, और मोहब्बत भी हो तो फ़ौरन जाके कह देते हैं आई लव यू। फिर इसी तरह मुकाबलेबाज थे कुछ लोग, कॉम्पिटेबल्स, यानी हर वक्त मुकाबले पर रहते हैं, वो आम तौर पे जीत भी जाएं तो खुश नहीं होते, या अकेले में उनकी तारीफ करे खुश नहीं होते, जब तक उनको कोई ये ना कहे कि तुम दूसरे से ज़्यादा अच्छे हो, तुम उससे अच्छा करते हो, तुम उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। तो ये ज़िंदगी को एक खेल का मैदान या मुकाबले की जगह समझते हैं। फिर इसी तरह सबको समझने वाले कनेक्टर्स, जो दूसरों को बहुत जल्दी समझते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं और उनके साथ अपना मामला अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह मुनसिफ मिजाज और तवाजुन रखने वाले लोग हमने देखे थे, यानी फेयर एंड कंसिस्टेंट्स, बहुत अच्छे लोग हैं, कामयाब हैं, सीधी सीधी ज़िंदगी है इनकी, साफ सुथरी ज़िंदगियाँ होती हैं, ना जुल्म करते हैं ना सहते हैं, और ना किसी के ऊपर ज्यादती करते हैं और ना सहते हैं, यानी हर खुशी गम मोहब्बत नफ़रत में ये बड़े एक कूल माइंडेड रहने वाले बैलेंस लोग होते हैं। फिर इसी तरह एक और शख्सियत हमने देखी, पस मंज़र को देखने वाले, कॉन्टेक्स्ट में खोए रहते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ था, अच्छा चूँकि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये होगा, इनको हर वक्त माजी की चीज़ों के साथ अपने हाल को जोड़ने की आदत होती है। फिर इसी तरह गौर व फिक्र करने वाली शख्सियत को हमने देखा, थिंकर्स, के जो बहुत सोच विचार के बाद, गौर व फिक्र के बाद लोगों को डील करते हैं, और अक्सर इनकी तबीयत में गौर व फिक्र का रंग गालिब होता है। फिर इसी तरह तामीरी शख्सियात देखी, जो डेवलपर्स हैं, और मेरा ले हम में से हर एक की ख्वाहिश और दुआ भी है कि हम यही हों। असल में ये हैं वो लोग जो माशरे बनाते हैं, जो लोग बनाते हैं, और इसकी बेहतरीन मिसाल हमने अम्बिया कराम की देखी थी, और वो लोग जो तारीख में कोई अपना काम करके गए, एक तब्दीली पैदा कर गए, कि जो अपनी ज़ात में एक उम्मत है, हमेशा लोगों को लेकर चलते हैं, और जो काम कर ले उसको उससे आगे बढ़ने की दावत देते हैं, तारीफ़ें करके उसको वहीं पे नहीं रोक लेते। फिर इसी तरह नज़्म व ज़ब्त पर सख्ती से अमल करने वाले, ये ज़रा से हद से बढ़े हुए लोग हैं, डिसिप्लिन बहुत हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही क्रेव है इनको, तो इनके साथ जीना ज़रा सा मुश्किल लगता है, बोरिंग लगता है, इंसान थ्रेट फील करता है इनकी मौजूदगी में, और ख़ास तौर पर अगर ऐसे लोग कहीं सास ससुर के रूप में हों, या कोई बॉस या लीडर या ऐसा इंचार्ज बन जाए शख्स, तो फिर तो उसको तो गोया कि वो काम मिल गया जिसके लिए वो लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा था। तो फिर इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो इन सारी चीज़ों को लोग फिर लेकर कभी किसी के मामले में अच्छा मामला कर रहे होते हैं, कभी बुरा मामला कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से हमदर्दी और दिल जोई करने वाले, एम्पैथेटिक यानी एम्पैथी होती है इनके दिलों में, ये लोगों के साथ इस तरीके का मामला करते हैं कि हर वक्त इनको दूसरे सही लगते हैं, हक पे लगते हैं, हाँ बेचारे, हाय वो बेचारे, उनकी मजबूरियाँ, हाय मैं उनके लिए कुछ करूँ, यानी तर्स खाने वाले लोग कह लीजिए, कि जो वाकई लोगों को अच्छे लगते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत तर्स खाते हैं ये, और लोगों की हमेशा हिमायत करते हैं, और उन लोगों को हमेशा ये फील कराते हैं, हाँ हनी आप ठीक है ना, आपकी भी तो कुछ मजबूरियां हैं। जो भी कोई इनको आके कह दे ना, इनको वो सच्चा लगता है वो शख्स। इस तरीके से भी ये उनके साथ अपने मामले करते हैं कि लोग वाकई फिर कहते हैं कि अगर कहीं बात करनी हो ना तो हम इनसे करेंगे, और लोग आएंगे तो पूछेंगे आज वो नहीं आए, अच्छा मुझे कोई बात करनी थी, नहीं हमसे कर लें, नहीं, मैं कल आ जाऊँगा, क्योंकि लोगों को पता होता है कि इन्होंने हमें बहुत जल्दी एडमिट कर लेना है और कहना है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसी तरह से मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे फोकस्ड लोग देखा, गाड़ी के इंजन हों तो ये बने, और इसी तरह से ड्राइवर्स हों तो ये हों। फिर इस तरह हमने देखा था मुस्तकबिल के लिए पुरजोश लोग, फ्यूचरिस्टिक टाइप के लोग, यानी जो हमेशा मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाब देखते, इरादे करते, प्लान्स करते, बहुत अच्छे लोग होते हैं। जाहिर है कि ऐसे लोग ना हो अगर किसी जगह तो फिर जमूद आ जाता है, तरक्की नहीं होती, ग्रो नहीं करता इंसान। फिर इस तरह मेल मिलाप करने वाली कोई शख्सियात ही हारमोनिक सी, यानी जो बहुत हारमोनी से रहती हैं, उसको मेल उसको मेल उसको लेना, उसके घर खुशी उसके गम, उसका बच्चा हो गया वो बीमार है उसको मिलना, तो ये बहुत ही पीपल प्लीजर्स टाइप के लोग होते हैं। नीयत के साथ है सब कुछ, याद रखिएगा कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे पर्सनैलिटी है, अच्छे रंग में अच्छी नीयत से अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे तो ये खूबी बन जाएगी, वरना इनमें से हर चीज़ बुरी है। मसलन जैसे अभी तक हमने प्रोड्यूसर्स देखे तो ये अच्छी खूबी है, लेकिन अगर ये खैर की चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो दी बेस्ट पीपल हैं, और अगर इनसे शर प्रोड्यूस हो गया तो क्या करेंगे। तो लिहाजा जितना कुछ आप सुन रहे हैं इसके बाद भी पर्सनैलिटी को लगाया किन कामों पे, गए किधर, किस रास्ते पे रहे, वो सब अहम है। फिर इसके बाद देखिए हमने देखा आइडियलिस्टिस को, यानी नित नए आइडियाज़ वाली शख्सियात, बस आप कैसे बैठ जाएं तो वो एक आइडिया ही बने होते हैं। बहुत सारे लोग आइडियाज़ बहुत देते हैं, ये कर लें वो कर लें, अच्छे लोग होते हैं, इनको साथ रखना भी चाहिए, और ये वो लोग होते हैं कि जो हकीकत में बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि थॉट प्रोवोकिंग भी होते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन तरीके से मैनेज भी करते हैं और डल नहीं होते, यानी वो लोग जो वाकई बेहतरीन तरीके से काम करें, यानी आइडियाज़ ले देकर अपने आप को दूसरों से अलग करने वाले इस हद से कि जिसके बाद आप कह सकते हैं कि जो दूसरों को फिर एहसास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। इसके बाद अब आगे आज हम शुरू करेंगे एक अगली टाइप को, नोट कीजिएगा, और ये वो कौन सी किस्म है, आप कह सकते हैं 23rd नंबर, और ये कौन है, मालूमात लेने वाले तजस्सुस पसंद लोग, द वन हु सीक इन्फॉर्मेशंस। इनको बहुत ज़्यादा ये होता है कि जी खबर लें, थोड़ा सा इस पर हमने बात की थी, लेकिन अगर हम इसी से ही थोड़ा सा मज़ीद आगे ले चलें तो ये कौन लोग हैं जो तजस्सुस बहुत करते हैं, अपने बच्चों से भी कुरेदते हैं किधर गए थे क्या हुआ, फिर दादी क्या कर रही थी, फूफो ने क्या बात की, और देखो ज़रा साहब क्या करते हैं, इनके ऑफिस में कौन आता है, यानी छोटी छोटी बात पर ये बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं और तजस्सुस लेते हैं, ठीक है। और ये वो लोग होते हैं कि जो मालूमात लेते हैं बहुत सारी हकीकत में, और ये ऐसे वो लोग होते हैं कि इनके अंदर बहुत कुछ है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको देखा और इनके बारे में देखा था कि इनको जर्नलिज्म, तदरीस, तरबियत, तहकीक, और इसी तरह साइंसदान होना चाहिए, लाइब्रेरियन होना चाहिए। ऐसी शख्सियात जो होती हैं ये अमूमन अच्छी चीज़ में हों तो तहस्सुस होगा, और बुरी चीज़ों में होंगे तो तजस्सुस होगा। इसको नोट कीजिएगा, यानी बैड थिंग्स को क्यूरियोसिटी के साथ देखना, इसको तजस्सुस कहते हैं, और अगर जीम को हा में बदले, और ये लफ्ज़ सूरत यूसुफ में आया है, तहस्सस वाला यूसुफ, हा 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 सीन हिस्से, तो तजस्सुस और तहस्सुस में फ़र्क क्या है, तजस्सुस नेगेटिव होता है अमूमन और तहस्सुस पॉजिटिव होता है। और इसके बाद आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में वाकई अगर रिसर्च वर्क में चले गए और बाकी चीज़ों में रहे तो बहुत अच्छे होंगे। फिर नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, और वो है सोचने वाली शख्सियत, थॉटफुल पीपल, यानी ये नाम से भी लग रहा है कि बहुत सोचने वाले लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्शन है, जहनी सरगर्मी चाहिए होती है इनको, ऑलवेज मेंटल वर्क चाहिए, इससे इनके जो जहन के कह लीजिए कि मसल्स हैं, उजलात हैं, ये मजबूत रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहते हैं, और इनका ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है कह लीजिए, हाँ लेकिन इसके लिए इनको फोकस की ज़रूरत होती है, चूँकि ये लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, तो इनको अपने इर्द गिर्द खामोशी चाहिए होती है। बच्चों का थोड़ा सा शोर भी इनको बॉदर कर देता है कि आपको नहीं पता मैं इतना अहम काम कर रहा हूँ, तो बच्चे कहेंगे अब्बू आप तो बैठे हुए थे। पर बच्चों को नहीं पता कि अब्बू अपने बैठने में एक दो फैक्ट्रियाँ भी लगा चुके हैं और वो इधर का पैसा इधर और उधर से इधर ले चुके हैं। तो ऐसे लोग सोचों में बहुत रहते हैं। मसलन आप देखिए कि अगर वो किसी मसले को हल कर रहे हो किसी वक्त बैठे हुए, अपना, फैमिली का, वर्कर्स का, मनी का, और कुछ नहीं तो बैठे हुकूमत के मसले हल करते रहेंगे, सियासतदानों की बातें सोचते रहेंगे, फिर इसी तरह से कोई आइडियाज़ इनके दिमाग के अंदर घुस जाता है तो बैठे बैठे उसको ही सोचते रहेंगे। बार सफ़ा इनके साथ बैठे हुए कहते हैं आप किधर खो जाते हैं, मुझे लग तो नहीं रहा आप इधर हैं। यानी इनकी आंखों से पता चल रहा होता है कि साथ बैठे हुए के पास नहीं है बल्कि अपने अंदर कोई चीज़ रखी हुई है। और अमूमन देखिए ऐसे लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती। कभी भी रात को अगर आपको कोई चीज़ सोने ना दे तो मान लीजिए कोई आइडिया घुसा हुआ है, कोई जोड़ा देख लिया था वो लेना है कल जाके, कल शॉपिंग पे जाना है, कल कोई बहुत ही आपकी पसंद का काम होने वाला है, तो ऐसा जहन फिर जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना खुश्की हो जाना, जहन में खुश्की हो जाती है। और ये लोग अमूमन लोगों के रवैयों को बहुत सोचते हैं। मसलन कोई फ़र्द है उनके घर में, मतलब उस पर घर में जुल्म हो रहा है या बहुत ही काम कराया जा रहा है, तो ये बैठे उसके एहसास के बारे में सोचने लग जाएंगे, हाय बेचारी, हाय सुबह से उठती हैं, हाय ये करती हैं, इस तरह से। लेकिन याद रखिए कि बेहतर फोकस के लिए सिर्फ सोचने की सलाहियत काफ़ी नहीं होती, इंसान को अपनी बाकी भी स्किल्स को यूज़ करना पड़ता है और उनको भी बेहतर करना होता है। और अगर आप ये देखें कि ये भी हो सकता है कि सोचने की सलाहियत की वजह से इनकी फोकस की जो स्किल है वो कम हो जाए, ये लोग सोचना चाहते हैं कतई नज़र इसके कि ये बात अहम है कि नहीं, बस इनको हर वक्त एक गोल चाहिए जिसके साथ ये फुटबॉल की तरह खेलते रहे। और इन्हें किसी मामले की अहमियत का इतना नहीं पता होता कि ये अहम है नहीं है, ये अर्जेंट है और नॉन अर्जेंट है, बस इनको हर वक्त सोचना है। जैसे कुछ लोगों को हर वक्त खाना होता है ना, कुछ को हर वक्त शॉपिंग करनी होती है, कुछ को हर वक्त घूमना होता है, इनको हर वक्त सोचना होता है, ठीक है? तो अमूमन फिर ये किसी मामले पर फोकस नहीं करते। और ये भी याद रखें कि इंट्रोस्पेक्टिव टाइप के लोग होते हैं, यानी ये खुद बीन होते हैं और अपने बेहतरीन साथी साबित होते हैं, ये भी लिख लें। ये लोग सोचने के दौरान अक्सर अपने से सवाल करते हैं और खुद कलामी इनकी शख्सियत का लाजमी हिस्सा होती है। इस वजह से कभी कभी बेइत्मीनान भी होते हैं, क्योंकि इनके सोचने से जब इनके अंदर नए नए ख्याल आते हैं तो ये ख्याल बार बार इनके मौजूदा काम से टकराते हैं, फिर ये सोचते हैं नहीं मैं तो कुछ और कर रही हूँ, मुझे तो कुछ और करना था। तो कभी कभी ये लोग परेशान भी होते हैं कि मैं जो कर रही हूँ ठीक नहीं कर रही, अच्छा मुझे लगता है कि फिर मैं काम नहीं सही करती, अच्छा मैं ठीक जगह पे हूँ। और अक्सर इनको दूसरों से राय लेने और उनसे मशवरा लेने की ज़रूरत होती है, और फिर गिले शिकवे भी आ जाते हैं कि मैं किसी से इतना अहम मशवरा करना चाह रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मैंने मैसेज किया तो जवाब नहीं दे रहे। अक्सर इनका माइंड कह लीजिए कैलकुलेटर होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर क्या करूँ, छोड़ दूँ, ना करूँ, ना रखूँ। तो बहरहाल ऐसे लोग चूँकि सोचते बहुत हैं इसलिए हकीकत पसंदीदा सोच भी होती है, लेकिन बाज़ लोग इनके ज़्यादा सोचने की वजह से गुस्से में आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी दूसरे को कोई और भी फैसला करना होता है लेकिन ये कहते हैं नहीं आई नीड टाइम, मैं बाद में बताऊंगी, पूरे इत्मीनान से चारों तरफ से परख के, छान पटक के फिर फैसला करते हैं। तो ऐसे लोग छोटे बड़े मामलों में भी सोचते हैं, बल्कि कह लें हर वक्त सोचते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम इनको कोई मशवरे दे दें, कोई चीज़ जो इनको फ़ायदा दे इनके कैरियर बिल्डिंग में या इनके ह्यूमन रिलेशंस में। तो बिल्कुल, आप देखिए हर इंसान को गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। पहली तो बात है कि ये कम सोचे, बहुत सारा सोचना बस दफ़ा इंसान को बोरिंग भी कर देता है। दूसरे लोगों को मशीनें नहीं अच्छी लगती, इंसान अच्छे लगते हैं, लेकिन ये एक मशीन की तरह बैठे सोचते सोचते कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये भी देखिएगा कि ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि पॉजिटिव सोचे। हर चीज़ खाई नहीं जाती ना, खानी भी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं होती, इसी तरह हर चीज़ सोचनी भी नहीं चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बेकार की सोचे, इस तरीके से हमारा वर्क ज़ाया करने वाली सोचे बन जाती हैं कि जिसके बाद फिर हम उनको कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं देना चाहेंगे कि जो के कह लीजिए कि लोगों ने दी होती है। फिर ऐसे लोगों को एज अ प्रोफेशन अगर कोई चीज़ चूज़ करनी हो तो इसके लिए इनको क्या चाहिए? पहली बात ये है कि ये सोच विचार वाला काम करें, मसलन आप देखिए अकाउंटिंग, फिर अदब, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, इसके मौजू पर इनको मुतालिया करना चाहिए, तो वो जो पढ़ने के दौरान इनकी सोचने की जो आदत है उसको तस्कीन मिलेगी। फिर इसी तरह से दिन का कुछ वक्त सोचने और गौर व फिक्र के लिए जान के रखें, ताकि पर्पजली कह दें कि ये मेरा सोचने और गौर व फिक्र का वक्त है, तो इससे फिर वो कम अज़ कम फुलफिलमेंट फील करेंगे और इनके अंदर एक एनर्जी आएगी। इनको एक और अच्छा सा मशवरा ये दिया जाता है कि अपने पास डायरी रखिए, जहन में कभी को आइडियाज़ आएँ उसको लिख लें, बार बार पढ़ें, फिर इससे उनके वो जो दिमाग की चक्की है वो ज़्यादा काम करेगी। और इनको अमूमन ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो इनकी दिलचस्पी के मौजूदात पे गुफ्तगू करें, क्योंकि ये सोच सोच के थक चुके होते हैं, और जब वो बंदा जो इनके ऊपर तवज्जो दे, जब ये उससे मिलेंगे, बात करेगा वो इनसे, तो ये खुशी महसूस करेंगे। फिर इसी तरह इनको अपने ही जैसे सोचने वालों से मिलना चाहिए ज़्यादा, और इससे फिर इनको सोहबत भी मिलती है, तवानाई और तहरीक भी मिलती है। और ऑफ कोर्स ऐसे लोग फिर अगर कैरियर के लिए यूज़ करें टॉपिक, तो ये फ़िलासफ़ी के बहुत अच्छे टीचर साबित हो सकते हैं, तहकीक के मैदान में ये बहुत आगे जा सकते हैं, तजिया निगार अच्छे हो सकते हैं, और शायरी भी अच्छी कर लेते हैं। और ये भी याद रखिए कि कोई भी चीज़ सिर्फ नामों से नहीं होती, आप और मैं इंसान हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमें बाहर हाल कुछ प्रैक्टिकलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर एक ही चीज़ आ गई, दूसरी ना हुई, दूसरी आई, तीसरी ना हुई, तो लोग खुश नहीं होंगे। तो ज़रा सा सोचिए, आपने अभी तक जो सुना आप इसमें से किधर हैं? चंद सवाल कीजिए खुद से, क्या मैं सबको साथ रखने वाली हूँ, या मैं इनफरादी सतह पर जानने वाली हूँ? मैं मालूमात लेने वाली हूँ, तजस्सुस पसंद हूँ, या मैं सोचने वाली शख्सियत हूँ? और अपनी इन सारी पर्सनैलिटी की चीज़ों को अगर अपने अंदर पाएं, तो लिखते जाइए, देखिएगा एंड पे आप एक बड़ा खूबसूरत सा पज़ल बनाकर उसके अंदर खुद को ढूंढ सकेंगी। अभी चलते हैं अगली काइंड पे, और वो क्या है, लर्नर्स, सीखने सिखाने वाली शख्सियत। लर्नर्स बहुत थोड़े होते हैं, याद रखिएगा, ये लोग सीखने से बहुत मोहब्बत करते हैं। सवाल ये है कि किस मौजू पर सीखना चाहते हैं, इसका ताल्लुक इनके माहौल और इनके टैलेंट से है, ये किन लोगों में है, इनके घर का माहौल कैसा है। और ये लोग कभी अपनी मौजूदा महारत और तजुर्बे को काफ़ी नहीं समझते, कह लीजिए कि ये टीचर बन जाते हैं लेकिन स्टूडेंट बनना नहीं छोड़ते, ये हमेशा सीखने के अमल से गुजरना चाहते हैं, और इनको सबसे ज़्यादा अच्छा काम लगता है सीखना, बहुत फोकस्ड होकर सीखने के प्रोसेस पे तवज्जो करते हैं, इनको इसमें लुत्फ भी आता है। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं उतना इनमें सीखने का जज्बा भी बढ़ता जाता है। जी, अगर इन्हें ऐसा माहौल मिल जाए जहाँ इनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने को कहा जाए, तो ये बहुत खुश होते हैं, नए मौके इनके लिए पुरजोश और मालूमात देने वाले होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब कोई नई चीज़ करेंगे तो सीखेंगे ना, बस घर में कोई मशीन आ गई तो ये खोलकर उसकी बुक पढ़नी शुरू कर देंगे, कोई नया सेलफोन किसी ने लिया ये कहेंगे लाएं हम आपको सेट करके देते हैं, और चीज़ों को इंस्टॉल करना और इसी तरह से असेंबल करना, इनको ये सब बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी इनको चूके काम करना है और इस तरह का सीखने का है, कोई ऐसा काम इनके सामने रख दिया जाता है जो मसलन इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक, और इनको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती, तो कभी कभी फिर ये बोर भी होने लगते हैं। दूसरों की नस्बत ये जल्दी सीखते हैं, क्योंकि इनकी लर्निंग स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो वो काम करते हैं इनमें इनकी बेहतरीन महारत हो, बस ज़रूरी नहीं कि इन्होंने आईटी में मास्टर्स किया हो, लेकिन इनको चूंकि आईटी से इंटरेस्ट है ना, तो इधर से उधर से ट्यूटोरियल निकाल लेंगे, कुछ चीज़ें डाउनलोड करेंगे और ढूंढ ढांड के भी सीख लेते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि ये उस फील्ड के बंदे भी हों जो काम फिर ये करने लग जाते हैं। चूंकि ये सीखते हैं तो इनके रिजल्ट्स बड़ी जल्दी दिखते हैं, तो लोग इनको फिर बहुत पढ़ा लिखा भी समझने लगते हैं। मसलन आईटी के मास्टर्स हो सकता है जिसमें लर्निंग का इतना शौक़ नहीं, उसका इल्म उसकी किताबों, उसके थीसिस में हो, उसकी नोटबुक्स में हो, हाँ उसके स्कूल के, उनकी यूनिवर्सिटी के कह लीजिए रिकॉर्ड्स में हो, और लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लोगों को फ़ायदा दे। लेकिन इसके बरक्स ये कुछ ना पढ़कर अपनी कोशिश से सीख सक के उससे ज़्यादा दूसरों की नज़रों में नुमाया होते हैं, कि बाज़ दफ़ा ये तक होता है कि लोगों को शक ही होने लगता है कि ये उससे ज़्यादा इस काम को जानता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक नेगेटिव चीज़ भी है कि इनके कुछ सीखने का मकसद अपने काम को बेहतर करना नहीं होता, बल्कि वो तो बस सीखना चाहते हैं, ख्वाब वो सीखना इनके काम से मैल रखे ना रखे, ये करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि अमूमन किसी ख़ास मौजू के माहिर नहीं होते, कोई ख़ास हदफ, कोई ख़ास मौजू, कोई काम इनके पास अगर आता भी है तो ये उसमें बस सीखने में नुमाया है, लेकिन रिजल्ट ज़रूरी नहीं कि वो पूरे के पूरे दे सके। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे मशवरे देने की ज़रूरत है हम सबको, इस सोच में कि अपनी इस खूबी को पॉजिटिवली यूज़ करें। मसलन इनको टेक्निकल स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, ऐसा करियर ढूंढे जिसमें इनकी टेक्निकल स्किल्स बढ़ें, और ऐसे लोग अपने मिजाज के मुताबिक बहुत जल्द जॉब भी तलाश कर लेते हैं, क्योंकि इनकी आदत ही ढूंढने की ना, ये हर वक्त अखबार में से ज़रूरत जॉब, और इसी तरह गूगल पे और वेबसाइट्स पे जाकर, बल्कि शादी करनी हो तो ऐसे लोग काफ़ी सारे रिश्ते भी ढूंढ लेते हैं और उनके बारे में फिर ये पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। फिर एक और इनको जो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ देती है वो क्या है कि नई जुबानें और नई स्किल्स तेज़ी से सीखने का जहाँ मौका मिले इनको उस शोबे में ज़रूर जाना चाहिए। मसलन ये ट्रांसलेटर्स हो सकते हैं, डॉक्टर और मरीज़ के बीच में एक लैंग्वेज का जो फ़र्क होता है, तो वो लोग जो उनकी हेल्प करते हैं उस शोबे में ये बहुत अच्छे होंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इनके सीखने के अंदाज़ भी फ़र्क होते हैं, कोई पढ़कर सीखता है, कोई लिखकर सीखता है, कोई गौर व फिक्र से खामोशी से सीखता है, कुछ लोगों से मिलजुल कर सीख रहे होते हैं। हर एक अपने आप को खुद देख सके कि मैं मशीनों से ज़्यादा सीखती हूँ कि मैं लोगों से सीखती हूँ, और जितना ज़्यादा आप अपने स्टूडेंट से सीखते हैं उतना टीचर से नहीं सीखते, क्योंकि हर स्टूडेंट आपको टीचर बनाने में मददगार और मुआविन होता है। फिर इनको एक और टिप ये देनी चाहिए कि कुछ भी सीखें लेकिन पहले गोल बनाएं, क्यों सीखना है, कब सीखना है, कितना सीखना है, कैसे सीखना है, क्योंकि सिर्फ सीख सीख कर ज़िंदगी तो नहीं गुजारनी, आगे जाकर काम भी करना है। फिर इनको नए नए कोर्सेज की तलाश रखनी चाहिए ताकि ये ज़िंदगी में बोर ना हो, और इनको जॉब्स बदलने में भी बड़ा मज़ा आता है, क्यों भला? ये लाशौर में होता है, बंदे को पता नहीं चलता, लेकिन इस रियलिटी, और वो क्या कि नई जॉब पे जाएंगे, नए लोग होंगे, नया चीज़ें सीखेंगे, वहाँ का सेटअप सीखेंगे, हम उनके काम करने का तरीका देखेंगे, इसी तरह नया कंप्यूटर लेके आना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इस जोश में कुछ अरसे बाद पुराना बेचकर नया खरीद लेंगे कि हम ज़रा नई कंपनी को देखते हैं, इसको खोलेंगे, अपने फ़ोन बेचते रहेंगे, फिर नए फ़ोन खरीदते रहेंगे। और इसी तरह से इनको बहुत डिस्करेज नहीं करना चाहिए, माइंड कट जाएंगे अगर आप इनको मज़ीद छोड़ देंगे सीखने के लिए। तो ऐसे लोगों को सहाफ़ी यानी जर्नलिस्ट बनना चाहिए, वॉलंटियर्स करने के लिए ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अंदर एक मिशनरी है ना कि मैंने कुछ करना है, तो ये अपनी इस मिशनरी जील की बुनियाद पे हर वो चीज़ सीख लेंगे जो आप इनको कहेंगे, लेकिन इनको आती नहीं थी। फिर सर ये कानूनी मुशीर के तौर पर बहुत ही फ़ायदेमंद है कि लोगों को अच्छे से अच्छे मशवरे दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप हैं ऐसी?